उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उपस्थित सज्जनों को नमस्कार करके आपकी सेवा में कुछ निर्णय करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। उपदेश और आदेश मैं तो देने की मुझमें योग्यता है, उनमें मेरा अधिकार ही है। आप लोगों का प्रेम है, इसलिए आपकी सेवा में कुछ निवेदन करने का विचार किया गया है। गीता के मां और सर्वशास्त्रों के बीच के मां यह बात बतलाई गई है, क्रिया की अपेक्षा भाव प्रधान है। मनुष्य की जो क्रिया है वो भी बहुत उस कोटि की रह जाती है जिसे उसके में भाव प्रधान होता है, और उस कोटि की क्रिया भी जब उसमें भाव जो है मनुष्य का होता है तो क्रिया मनुष्य की समझ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे एक भाई यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, सेवा करता है, कोई भी प्रकार को अनुष्ठान करे है, और वो करता है अपने शत्रु को मारने के लिए या उसके दिल के मां ऊंचा की पैदा करने के लिए, तो वो उसका जो यज्ञ दान तप है, अनुष्ठान सेवा आदि सभी क्रिया काम से समझी जाती है। वो यज्ञ दान तप है और सेवा आदि उत्तम क्रिया वो कामना को लेकर करता है, स्त्री की पुत्र की धन की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की कोई कामना को लेकर करता है, तो वह कर्म राशि समझ जाता है, चाहे कामना सुरती ही क्यों नहीं हो। और जो हो अपना कर्तव्य समझ करके कि निष्काम भाव से करता है, तो भाव की उत्तमता होने के कारण से वो साक्षी समझा जाता है। यज्ञ दान तप की तो बात नहीं, क्या है मनुष्य जो है मनुष्य की क्रिया जैसे झाड़ू देना या नाली साफ करना या पायखाना साफ करना, जो देखने के में बहुत छोटी क्रिया है किंतु उसका भाव जो है निष्काम है, वह कर्म बहुत उत्कृष्ट का समझा जाता है। एक भाई सैकाम भाव से भगवान का ध्यान करता है, क्यों करता है भगवान का ध्यान, पुत्र की कामना के उद्देश्य से, धन की कामना के उद्देश्य से, स्वर्ग की कामना के उद्देश्य से, किंतु दूसरा जो भाई है वो ध्यान तो नहीं करता किंतु दूसरों के हित के लिए उपकार के लिए उसकी सेवा करता है, करता है निष्काम भाव के लिए, माने निष्काम भाव से करता है, कोई कामना को लेकर के नहीं, वो मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा की इच्छा से नहीं, स्वर्ग की कामना के लिए भी नहीं, केवल अपना कर्तव्य समझ करके और निष्काम भाव से कहता है, तो वो उसका निष्काम कर्म जो है उत्तम है। फल और आसक्ति से रहित होकर के और कर्तव्य समझ करके करता है, उसकी महिमा भगवान के सैकड़ों ध्यान से भी बढ़ करके है। भगवान ने गीता की 12वें अध्याय के 12 के श्लोक के उत्तरार्ध में बताया है कि ध्यानात् कर्म फल त्यागश त्यागा शांति अनंतरम। ध्यान से तेरी कर्म फल का जो त्याग है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से शांति मिलती है, त्याग के अनंत शांति मिलती है। तो जिस क्रिया के बीच के ना फल का त्याग है, आसक्ति का त्याग है और ममता और अभिमान का त्याग है, उसे शांति मिलती है। गीता की दूसरी अध्याय की 31 के श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, विहाय कामान ये सर्वान पुमान सृति निष्प्रिय निर्ममो निर्हंकार है शांति में गच्छति। अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके और ममता हंका उत्प्रिय असर रहित होकर के संसार के विषय में विचरण करता है यानी कर्म करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। उस निष्ठा वाली शांति को, शाश्वत शांति को, जिसको परम शांति कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद जो शांति मिलती है उस शांति को प्राप्त होता है। निष्काम कर्म की सभी शास्त्रों में बड़ी महिमा आती है। निष्काम कर्म को ज्ञान के साधन से भी उत्तम बतला है। अर्जुन ने गीता की 5वीं अध्याय के आरंभ में पूछा है, संन्यास कर्म योगश्च। अर्जुन ने पूछा है कि कर्मों का संन्यास और कर्मों का योग, इस दोनों में कौन सा ऐसा कल्याणकारक है? तो भगवान कहते हैं, संन्यास कर्म योगश्च निःसन्यास कर्म हो तो तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्टते। संन्यास यानी सांख्य योग, जिसको ज्ञान योग कहा गया है, उसका नाम यह संन्यास है। दूसरी तरफ कर्म योग, निष्काम भाव से कर्मों का करना, उसका नाम कर्म योग। जिस कर्म में फल की और इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, ममता अहंकार भी नहीं है, ऐसा जो कर्म योग है, ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों ही कल्याण के करने वाले हैं। किंतु तेषु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्ट है, उन दोनों में कर्म संन्यास स्थिति कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास माने जिनमें कर्मों का त्याग है, ऐसे कर्म के संन्यास से, या जिसे का नाम ज्ञान योग है, जिसको सांख्य योग भी कहते हैं, जिसको संन्यास भी कहा गया है, ऐसे संन्यास योग से यानी सांख्य योग से कर्मों का संन्यास यानी कर्म योग वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ही नहीं, उसकी सुगमता बदलाई जाती है। ज्ञेयस्य नित संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो महाभाव सुखं बन्धा प्रमुच्यते। हे महाभाव माने हे अर्जुन, ज्ञेयस्य नित संन्यासी, उस कर्मयोगी को जिन्होंने कर्मों के मां फल और आसक्ति का त्याग किया है, उनकी यह महिमा है। यहाँ एक वचन है किंतु आदर के लिए दो वचन का प्रयोग किया जाता है। उनको निसन्यासी ही जानना चाहिए। यो न दृष्टि न कांक्षति, जो न किसी से द्वेष करता है और न कोई चीज की आकांक्षा करता है, क्योंकि दुर्गुण से जो रहित है वह सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है, अनायास ही बंधनों से मुक्त हो जाता है। दुर्गुण क्या कि हरक शोक राग द्वेष आदि जो दो दो वस्तु है उन सब से वह मुक्त हो जाता है। मुक्त भी सुख पूर्वक अनायास परिश्रम का काम नहीं। तो ये बता दिया गया है कि निष्काम कर्म जो है जिसको कर्म जो कहा गया है वो तो ज्ञानियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है और सुगम है। इतना ही नहीं, उससे कल्याण की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। भगवान ने गीता की पांचवी अध्याय के छठे श्लोक में बताया है, संन्यासस्तु महाबाहु दुख मार्तु मनंतो योग युक्तो मुनिर्गणे न चरणादि गच्छति। संन्यासस्तु महाबाहु दुखम आप तुम अयोगता, हे महाबाहु संन्यास जो है सांख्य योग जो है योग का साधन किए बिना, पहले योग का साधन किए बिना उस सांख्य योग जो उसकी सिद्धि दुख से होती है, यानी बहुत ही कष्ट से होती है। और योग जो मुनि है, योग का साधन करने वाला जो मुनि है वो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, यानी वो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योग मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए बात सिद्ध होगी कर्मियों का जो साधन है उससे ब्रह्म की प्राप्ति शीघ्र मिल जाती है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि ज्ञानियों के साधन में ब्रह्म होता है और कर्मियों के साधन से हमारे पूर्व के किए हुए जो पाप निश्चल एक प्रकार से विनाश हो जाते हैं। योगी लोग तो पापों के नाश के लिए और अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्मों का आचरण करते हैं। काय मनसा बुद्ध्या केन्द्रेन्द्रियेऽपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयमं त्यक्त्वा पुंसुद्धिः। काय मनसा बुद्ध्या, केवल काया करके यानी शरीर करके, मन करके, बुद्धि करके और इंद्रियों करके योगी जन जो है सो कर्म करते हैं। आसक्ति को त्याग करके के अंतःकरण की शुद्धि के लिए युक्त कर्म फलन त्यक्त्वा शांति मापनोत् निश्चिकिं। ऐसा योग युक्त पुरुष फल को त्याग करके जो कर्म करता है वह शांति को प्राप्त होता है, निष्ठा वाली शांति को। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद जो शांति मिलती है उसको निष्ठा वाली शांति कहते हैं। योग निष्ठा की सिद्धि होने पर जो बाद में शांति मिले है उसको निष्ठा वाली शांति कहते हैं, उसी का नाम परम शांति है। ज्ञान यज्ञा करने समग्र कर लिए थे। गत्संन्यस्य जो आसक्ति से रहित है और दोषों से मुक्त है, गत्संन्यस्य मुक्तस्य और ज्ञान अवश्य और परमात्मा का जो ज्ञान है उसमें जिनका चित्त है, ऐसा पुरुष यज्ञ के सिद्धि के लिए यानी कर्मयोग यज्ञ है, ऐसे कर्मयोग की सिद्धि के लिए कर्मों का आचरण करता है। उसके समग्र माने पहले के जितने भी कर्म है ये सब विलीन हो जाते हैं, माने उसने जितने जो पाप किए हैं वे सब एक प्रकार से थी अपने नष्ट हो जाते हैं इस कर्मों के साधन के प्रभाव से। कर्मों के साधन के प्रभाव से जो परमात्मा का यथार्थ जो ज्ञान है, फल रूप जो ज्ञान है, उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जिस ज्ञान की बड़ी भारी महिमा हमारे शास्त्रों में बतलाई है, वह ज्ञान भी उसको अपने आप ही मिल जाता है। नहीं ज्ञाने न सदेशं पवित्र विद्यते तत्संयोग संसिद्ध कालिनात्म निंदती। पहले जो बतला था गत संज्ञा से मुक्त से ज्ञान अवस्थित से, गत संज्ञा से मुक्त से ज्ञान अवस्थित से यज्ञ चर्चा करने समग्रम पवलिए थे, ये गीता की चौथी अध्याय का 23 का श्लोक था, जिससे ये बात सिद्ध की गई कि उनके सारे पाप ऐसो अपने विलीन हो जाते हैं, यानी सब पाप ऐसो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। उसी की बात आपको बताई जाती है, उसको ज्ञान की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। नहीं ज्ञाने न सदेशं पवित्रं विद्यते, ये गीता की चौथी अध्याय का 38 का श्लोक है। इसका ये भाव है कि ईमान इस संसार के बीच के मां ज्ञान के समान कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है, ज्ञान के समान कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। नहीं ज्ञान एवं सदेश पवित्र में विद्यते तत्स्वयोग संसिद्ध कालिनात्म विद्यते, तत्मान वे ज्ञान काल करके योग संसिद्ध हुआ पुरुष, वे ज्ञान काल करके योग संसिद्ध हुआ पुरुष अपनी आत्मा में स्वयं अपने आप ही पा लेता है, उसको प्राप्त हो जाता है। तत्स्वयं स्वयं माने अपने आप ही स्वतंत्रता पूर्वक योग संसिद्ध हुआ पुरुष अपने आत्मा में पा लेता है। तो उसे निष्काम कर्म के प्रभाव से अंतकर्ण शुद्ध हो जाता है, सारे पाप नाश हो जाते हैं। अंतकर्ण में तीन दोष है, तीनों दोषों का नाश हो जाता है। एक मल दोष है जो हम लोगों के हृदय के मां पापों के संस्कार, दुर्गुणों के संस्कार, जैसे काम क्रोध अहंकार राग द्वेष, ये जो है ये सब अंतकरण के में दुर्गुण है। और जो पापों का समूह के संस्कार है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, मदिरा पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, जितने जो संसार में पाप है उनके जो संस्कार हृदय में जो अनंत जन्मों से इकट्ठे हो रहे हैं, उन सबका नाम है मल दोष। और जितने जो चंचलता है ये विक्षेप दोष, और जो चिटके हुआ जो अज्ञान है ये आवरण दोष। इन सब दोषों का नाश होकर के जो शुद्ध हो जाता है उसको ये बात कही जाती है, स्वयं योग संसिद्ध हो, स्वयं अपने आप ही योग से संसिद्ध हुआ पुरुष है, माने योग की सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष है। उस शुद्ध अंतःकरण के बीच में उस ज्ञान को अपने आप ही पा लेता है। इस निष्काम कर्म योग की शास्त्रों में बड़ी महिमा बतलाई गई है, इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं तस्मात असक्त सततन कार्यम कर्म समाचर असक्त या कर्म करने परमात्मोति पुरुष। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ जो कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार से तू पालन कर, आसक्ति से रहित हुआ तुम कर्तव्य कर्म का, शास्त्रभूत कर्मों का तुम समक प्रकार से अच्छी प्रकार से तुम उसको पालन कर। क्यों? आसक्ति से रहित हुआ पुरुष परम जो परमात्मा है उसको पा लेता है, मानुष को प्राप्त हो जाता है। तस्मात असक्त सत्तम कालीन कर्म समाप्त है, असक्त हुआ सम कर्म है परमात्मोति पुरुष है, आसक्ति से रहित हुआ पुरुष है, शास्त्रविद कर्मों को करता हुआ उसे परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो निष्काम कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, निष्काम कर्म से थी अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, निष्काम कर्म से शीघ्र जो है सो उद्धार हो जाता है, निष्काम कर्म जो है सो साधन में बहुत सुगम है, निष्काम कर्म जो है सहकाम भक्ति की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है और ज्ञान के साधन से भी श्रेष्ठ है और निष्काम कर्म के साधन से सुगमता से इसका कल्याण हो जाता है। इसलिए हम लोगों को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और साथ के बीच के वहां ईश्वर की भक्ति का सम जुड़ जाता है तब तो फिर कहना ही क्या है, तब तो फिर कहना ही क्या है। निष्काम कर्म का स्वरूप क्या है, इसकी कसौटी क्या है, हम कब समझ लें कि अब हम योग युक्त हो गए, युगानुभ हो गए, योग के साथ में निपुण हो गए। तो बतला है गीता की छठे अध्याय के चौथे श्लोक में, यदा ही निंद्रिया चेसु न कर्म सम सज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगा रूढ़िस्त उच्यते। जिस काल के बीच के न साधका न इंद्रियों के अर्थों के बीच के न आसक्ति रहती है, ये साधक जो है सो इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं होता है, शब्द स्पर्श गंध आदि जो इंद्रियों के विषय भोग हैं उनमें जब ये आसक्त नहीं होता है और न कर्मों में आसक्त होता है, कर्म तो करता है किंतु उसमें आसक्त नहीं होता, तब ये सारे संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहलाता है, तब ये सब संकल्पों से रहित योगारूढ़ कहलाता है। ये उसकी कसौटी है, मन में कोई प्रकार का संकल्प न होए और आपकी सारी क्रिया निष्काम भाव से होने लगे तो उसके फलस्वरूप में आपको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदि कहो क्या उस समय में हमारे सारे कर्म सुचारू रूप से हो सकते हैं बिना संकल्प के, बिना हो सकते हैं। भगवान ने गीता की चौथी अध्याय की 19 के श्लोक में बताया है, जिसे सर्वे समारंभा और काम संकल्प वर्जिता, जिसे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता और ज्ञान आदमी दृढ़ कर्मान तमाम पंडितों ने पूछा। इसके पूर्व के बीच के मां भगवान ने ये बात बतलाई, कर्म ने कर्म ये पश्चिम कर्म ने च कर्म यो सबुद्धिमान मनुष्यु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। जो कर्मों के बीच के मां अकर्म को देखता है और अकर्म के बीच में जो आपने कर्म को देखता है वह मनुष्यों के बीच के मां बुद्धिमान है, युक्त है और सब कर्मों के करने वाला है। कर्मों के बीच में अकर्म का देखना क्या, कि देखने के मां वो कर्म करता है किंतु वास्तव के बीच के मां उसमें न तो कोई आसक्ति है और न कोई कर्मों के मां फल की इच्छा है और न उसमें कर्मों करने कर्मों के करने का अभिमान ही है, तो वो करता हुआ भी एक प्रकार से कुछ नहीं करता है। जैसे बतला है तब तो आप कर्म फलासन नित त्रिपत निराश्रय कर्मण्य ही कर्मण्य भी प्रवृत्त भी मेरे केंद्रित करो। ये गीता की चौथी अध्याय के 20 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि तत्व कर्म फलाशनम, कर्मों के बीच में फल और आसक्ति का जिस पुरुष ने त्याग कर दिया है और नित्य उस परमात्मा के ध्यान जनित आनंद में तृप्त है, उस संसार के आश्रय से रहित है, कर्म के फल के आश्रय से रहित है, अनाश्रित कर्म फलन कार्य कर्म करोती हो, जो कर्मों के फल को नहीं चाहता हुआ और कर्तव्य कर्म को करता है, तो कर्मों के बीच के वहां आश्रय रहित है, संसार के वहां कर्मों का जो फल है उसके आश्रय से रहित है, ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी किंचित मात्र कुछ भी नहीं कर, तो कर्म न करने जो पश्चेत, जो कर्मों के बीच के वहां अकर्म को देखता है, यानी देखने के वहां कर्म करता है किंतु वास्तव के बीच के मां वो करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता, उसकी क्रिया फल देने वाली नहीं होती, इसलिए उसकी जो क्रिया है वो कर्म के नाम से नहीं मानी जाती।